Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। इतिहास में है कि कभी कभी सुकरात शहर के मेन गेट पर बैठ जाता था और आने वाले अजनबियों का स्वागत करता था। एक दिन एक अजनबी उसके पास आया और उसने कहा, मैं आपके शहर में रहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? सुकरात ने पूछा, आपके शहर में किस तरह के लोग रहते हैं? उसने कहा, ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, इसीलिए मैं अपना शहर छोड़ आया हूँ। सुकरात ने कहा, यहाँ के लोग भी इसी तरह के हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी खोज जारी रखता। उसके कुछ ही देर बाद एक दूसरा आदमी वहाँ पहुँच गया और उसने सुकरात से उसके शहर के लोगों के बारे में पूछा। सुकरात ने उससे भी वही सवाल किया कि तुम्हारे शहर के लोग कैसे हैं? उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी मदद करते हैं, सच बोलते हैं और मेहनती हैं, क्योंकि मैं बाकी दुनिया को भी देखना चाहता था इसलिए मैंने अपने वतन को छोड़ दिया। सुकरात ने कहा, यहाँ के लोग भी इसी तरह के हैं, यकीन करो कि ये वही जगह है जिसकी तुम्हें तलाश थी। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 16वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। अंग्रेज़ों ने जोखिम भरे महासागरों का सीना चीरा ताकि नई दुनिया में कदम रखें और उसे जीत सकें। 1585 में पहला ब्रिटिश जहाज़ वर्जीनिया पहुंचा। इस जहाज़ का कप्तान रिचर्ड ग्रैनविले था, जो ब्रिटिश नौसेना का अफसर था। वर्जीनिया के मूल नागरिक रेड इंडियंस बहुत मेहमान नवाज थे और उन्होंने बाहें फैलाकर अंग्रेज़ों का स्वागत किया। रेड इंडियंस के यहाँ ये रिवाज था कि जब वो किसी से दोस्ती का इजहार करते थे और उसके साथ खाने पर बैठते थे तो वो जो चाहता था उनके यहाँ से ले जा सकता था। जब वो शख्स चीज़ ले जाता तो वो उसे कभी वापस करने की बात नहीं करते थे। वो बहुत ही सच्चाई के साथ दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को साझा करते थे और सामने वाले से भी ऐसी ही उम्मीद रखते थे। एक दिन एक रेड इंडियन को अंग्रेज़ों की चांदी की प्याली बड़ी अच्छी लगी और उसने अपने यहाँ रस्म के मुताबिक उस प्याली को उठा लिया। ग्रैनविले ने जैसे ही देखा उसे चोर कहकर पुकारा और आदेश जारी कर दिया कि उस गांव को तहस नहस कर दिया जाए, जिसके बाद गांव के सभी घरों को आग के हवाले कर दिया गया। शायद ग्रैनविले वही अजनबी था जिसके शहर के लोग अच्छे नहीं थे, झूठ बोलते थे, धोखा देते थे और चोरी करते थे। रेड इंडियंस का जनसंहार करने के लिए यूरोपियों के पास हमेशा कोई बहाना होता था। 1610 के जाड़े के मौसम में जब जेम्स टाउन में अंग्रेज प्रवासी भूख से मर रहे थे तो पोहातान कबीले ने अंग्रेज प्रवासियों के एक गुट को शरण दी और भूख से नजात दिलाई। कबीले के सरदार ने उन्हें शरण दी और कहा कि आप लोग हमारे लोगों के साथ शांति से रह सकते हैं। जैसे ही गर्मियों का मौसम आया, प्रवासियों के सरदार ने कबीले के सरदार के पास एक संदेश भेजा कि वो हमारे भगोड़े साथियों को वापस लौटा दे, लेकिन रेड इंडियंस अब उन्हें अपना मेहमान मानते थे इसलिए उन्होंने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया। जो शख्स संदेश लेकर पहुंचा था वो खाली हाथ वापस लौट गया और उसने वहां जाकर कहा कि पोहातान कबीले का सरदार बड़ा अहंकारी है और उसने हमारे कबीले का अपमान किया है। अंग्रेजों को अच्छा बहाना मिल गया था, انگریز سپاہیوں نے قبیلے کے کیمپوں پر حملہ کر دیا، 16 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، گھروں میں آگ لگا دی اور مکے کے کھیتوں کو برباد کر دیا۔ انہوں نے قبیلے کے سردار کی پتنی اور بچوں کو بندھک بنا لیا، بچوں کو سمندر میں پھینک دیا اور ان کی ماں کو جہاز پر لے جا کر چاقوؤں سے کاٹ ڈالا۔ انگریز ریڈ انڈینز پر اتنا اتیاچار کرتے تھے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اور سن کر ہی کانپ اٹھے اور سامنا پڑتے ہی ان کے سامنے سر جھکا دیں، اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کریں۔ یورپیوں میں فرانسیسی کچھ سمجھداری کا ثبوت دیتے تھے اور ریڈ انڈینز پر تلناتمک روپ سے کم ہنسا کرتے تھے۔ لوئیزیانا یا کینیڈا جیسے علاقوں میں جہاں فرانسیسیوں کا قبضہ تھا، ریڈ انڈینز ادھک سوتنترتا کے ساتھ رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 1756 میں فرانس اور انگلینڈ کے بیچ شروع ہوئے 7 ورشیے یدھ میں ریڈ انڈینز نے فرانسیسیوں کا سمرتھن کیا تھا۔ اس جنگ میں فرانس کے کمانڈر ماؤنٹ کام تھا۔ ریڈ انڈینز نے انگریزوں کے مقابلے میں اس کی بہادری کے کئی قصے سن رکھے تھے، اس لیے وہ اسے مکتی داتا کے طور پر دیکھتے تھے۔ ماؤنٹ کام سے ملاقات میں ایک ریڈ انڈین سردار نے کہا تھا، ہماری یہ تمنا تھی کہ کوئی مرد ہو جو انگریزوں کو اپنے پیروں تلے رونت دے۔ ہمیشہ سوچتے تھے کہ اس شخص کی مہانتا اتنی ہوگی کہ اس کا سر آسمان تک بلند ہوگا اور اس کے سر کے چاروں اور بادل ہوں گے۔ آج جب میں آپ سے ملا تو میں نے دیکھا کہ آپ میں وہ مہانتا نہیں ہے، حالانکہ جب میں آپ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ آپ میں باز کی طرح تیزی اور تیورتا ہے۔ دراصل ماؤنٹ کام ان ریڈ انڈینز کی طاقت کا استعمال کر کے انگریزوں کو روندنا چاہتا تھا۔ ریڈ انڈینز اپنے سبھی یدھوں کی طرح اپنے چہروں کو الگ الگ رنگوں سے رنگین کر کے فرانسیسیوں کی ناووں میں بیٹھے تھے۔ یورپی لوگوں کی پرشنسا کے باوجود یورپی لوگ ریڈ انڈینز کو سمان نہیں دیتے تھے۔ جب فرانسیسی جنرل نے برٹش قلعے کو گھیر لیا تھا تو اس نے انگریزوں کو ایک پتر میں لکھا، میں ایمانداری سے آپ سے قلعہ خالی کرنے اور آتم سمرپن کرنے کا انوروھ کرتا ہوں، میں ابھی بھی ان جنگلی ریڈ انڈینز کو آپ کے قلعے پر حملہ کرنے سے روک سکتا ہوں۔ فرانسیسیوں اور ریڈ انڈینز کے گٹھ بندھن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 7 سال تک چلنے والے یدھ میں فرانس کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد انگریزوں کے سامنے ریڈ انڈینز اکیلے پڑ گئے۔ ان کے پاس انگریزوں سے بات کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا تاکہ نئی پرستھتیوں میں ان کی ادھک ہنسا کو کم کیا جا سکے۔ انگریزوں کی فوج کے کمانڈر جنرل جیفری ایم ہرسٹ نے وارتا کا پرستاؤ سویکار کر لیا۔ اس نے قلعے کے شاسک کو آدیش دیا کہ انگریزوں کی سدبھاونا کو درشانے کے لیے مینچسٹر کی فیکٹریوں میں تیار ہونے والے ڈھیر سارے بلینکٹ ریڈ انڈینز کے سردار کو دیے جائیں۔ بلینکٹ جلدی ہی ریڈ انڈینز کے بیچ بانٹ دیے گئے۔ یہاں صرف ایک مہتوپورن مدعا یہ تھا کہ کمانڈر نے یہ بلینکٹ چیچک کے اسپتال سے لانے کا آدیش دیا تھا۔ سبھی بلینکٹ چیچک کے وائرس سے سنکرمت تھے، ایک سنکرامک روگ جس سے یورپی لوگوں کے امریکہ پہنچنے سے پہلے ریڈ انڈینز پریچت نہیں تھے۔ چیچک جلد ہی ریڈ انڈینز کے بیچ ایک مہاماری بن کر پھیلنے لگی اور بڑے پیمانے پر موتیں شروع ہو گئیں۔ اس بیماری نے ریڈ انڈینز کی کمر توڑ ڈالی، جبکہ وہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ اس سے کیسے لڑنا ہے۔ انگریز ان کی ساموہک موتوں کو دیکھتے رہے اور ان کے علاج کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ جنرل ایم ہرسٹ دنیا میں مائکروبیل وارفیئر کے کمانڈر کے روپ میں بدنام ہوا۔1740 میں ایک انگریز فوجی افسر ولیم جانسن کو امریکہ بھیجا گیا۔ جانسن کو ایروکوئس قبیلے کے ساتھ گٹھ بندھن کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ایروکوئس ریڈ انڈینز کا ایک بڑا قبیلہ تھا جو نیو یارک کے نزدیک رہتا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ صدیوں سے وہ اوت بلاؤ، جل اوت بلاؤ اور جل کتوں کا شکار کرتے چلے آ رہے تھے اور اب یورپی ان جانوروں کی کھالوں کے سب سے اچھے خریدار تھے۔ ولیم جانسن نے جلد ہی ریڈ انڈینز کی بھاشا سیکھ لی और खाल खरीदने के लिए इरोक्वेस कबीले के पास गया। उसने खालों के लिए अच्छी कीमत की पेशकश की और जल्द ही रेड इंडियंस के बीच एक शांत और निष्पक्ष श्वेत व्यक्ति के रूप में उसने अपनी पहचान बना ली। कुछ समय बाद जॉनसन ने रेड इंडियंस से उनके विभिन्न समारोहों में भाग लेने की अनुमति मांगी। रेड इंडियंस ने खुशी खुशी इस दयालु अंग्रेज को अपनी दावतों में बुलाना शुरू कर दिया। डांस फॉर द सन जैसे भव्य उत्सव में जॉनसन ने सभी रेड इंडियंस की तरह ठुमके लगाए और इस समारोह में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके कारण उसे सेक्रेट एरो संरक्षक के रूप में चुन लिया गया। जॉनसन चमड़े की तिजारत में रेड इंडियंस के फैसलों को प्रभावित करने के लिए कबीले की विशिष्ट हस्तियों की परिषद में शामिल हो गया। उसने अपने प्रयास तेज कर दिए और कबीले के सरदार का अनुवादक बन गया। उसने बंदूक, बारूद और पशुओं जैसे ब्रिटिश उत्पादों को सस्ते दामों पर रेड इंडियंस के लिए खरीदना शुरू कर दिया और कबीले में बीमार पड़ने वालों का इलाज ब्रिटिश दवाओं से शुरू कर दिया। इसके अलावा जॉनसन को अब इरोक्वीस कबीले की उच्च परिषद में जगह मिल चुकी थी। उसके बाद उसने कबीले की विशिष्ट हस्तियों को प्रोत्साहित किया कि वे पूरब से मध्य अमरीकी भागों में शिकार करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके और बाकी रेड इंडियंस कबीलों के बीच युद्ध की संभावना बढ़ जाती, जो जॉनसन की नज़र में ज़रूरी था। यूरोप में खालों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यूरोप के अमीर लोग अमेरिका से आयात की जाने वाली खालों से महंगी वेशभूषा तैयार करते थे और दरबार में होने वाली पार्टियों में उनका इस्तेमाल किया करते थे। इस व्यवसाय पर पूरी तरह फ्रांस और ब्रिटेन की पकड़ थी और दोनों ही रेड इंडियंस के साथ ये व्यापार करते थे। इसकी बढ़ती डिमांड के मद्देनज़र जानवरों का शिकार भी इस हद तक बढ़ गया कि अमरीका के कुछ हिस्सों में जानवर लुप्त होने लगे। दूसरी तरफ फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच रेड इंडियंस कबीलों के साथ खाल का व्यापार बढ़ाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा जारी थी। इरोक्वीस कबीले की पूर्वी अमेरिका के कुछ कबीलों से पहले ही जंग हो चुकी थी, जिसमें उसने उनके शिकार करने वाले हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा वो ओहायो, इंडियाना, मिशिगन और विस्कॉन्सन राज्यों में अन्य रेड इंडियंस के साथ व्यापार भी करता था और उनसे अंग्रेज़ों के लिए खाल खरीदता था। कबीले की उच्च परिषद में शामिल होकर जॉनसन ने कबीले को फ्रांसीसियों के साथ व्यापार करने से रोक दिया। उसके बाद फ्रांसीसियों को खाल आयात करने के लिए उत्तरी क्षेत्रों और कनाडा का रुख करना पड़ा। यूरोप में खाल भेजने वाली बंदरगाहों से इन क्षेत्रों की वजह से परिवहन की लागत बढ़ जाती थी। इसी वजह से यूरोप में फ्रांसीसियों का माल अंग्रेजों की माल की तुलना में 50% अधिक महंगा पड़ता था। इरोक्वीस से बातचीत के बाद भी फ्रांसीसियों को इसमें सफलता नहीं मिली। ये कबीला अंग्रेज़ों के साथ आसानी से व्यापार करता था और चूंकि उनका व्यापार फल फूल रहा था, इसलिए उनके बीच कोई सैन्य टकराव भी नहीं था। न सिर्फ इरोक्वीस ने फ्रांसीसियों के साथ व्यापार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन कबीलों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया जो फ्रांसीसियों को खाल बेचते थे। इस प्रतिस्पर्धा में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से मात खा चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि एक अंग्रेज़ अफसर जो रेड इंडियंस के साथ पूरी तरह से घुल मिल चुका है, किस तरह चमड़े के कारोबार में छा गया और उसने फ्रांसीसियों को किस तरह इससे दूर कर दिया। जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ तो इरोक्वीस ने अन्य रेड इंडियंस के विपरीत अंग्रेज़ों का साथ दिया। वो कनाडा में मॉन्ट्रियल तक फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ियों का पीछा कर रहे थे, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। हार के बाद फ्रांसीसियों ने उत्तरी अमेरिका छोड़ दिया। अंग्रेज़ों को अब फ्रांसीसियों से कोई ख़तरा नहीं था। इरोक्वीस के इस्तेमाल की तारीख अपने अंत को पहुंच चुकी थी और अब उन्हें भी अपने अन्य साथियों की तरह पश्चिम की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना था। मोहाक कबीले के श्वेत मुखिया ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। आखिरकार विलियम जॉनसन का मिशन ख़त्म हो गया।